So how is everyone feeling after yesterday's program? Eventually, when did you go back? The organizer? Your performance was brilliant yesterday. Very nice. Do you play cricket? And play for Pakistan?
Then what is you going to sit here? Then you go to sit here. Maybe there is not a proper place. Log will be kaise hoga? Children will have. Children, you can come.
So when did you go back home last night? Huh? That's late. That was not so late. Are you all happy about the way it was conducted? Where is Shubhashyam? He's on the way. And how are you all doing? Did you have a good rest after the late night? When did you all go to sleep? Huh? When did you go to sleep last night? At home. Before midnight or after midnight? Before midnight. Okay. So you all rested well, right?
You can.
Now are you ready for the Bhagavatam class? Huh? Should I ask you a question?
Gujarati, na?
That is today's paper?
Yes, Maharaj. भगवान ने ओल की लई है तो आपको विश्व आप मुझे भक्ति चालू महाराज
मैंने
गुजराती गुजराती कौन
गुरु महाराज की लेक्चर का पार्ट दिया
लेक्चर का पार्ट प्रभु जी
Who can speak Gujarati? Who can understand? Who can read Gujarati?
Krishna, मैंने लिखा है आपने मेला में खोवायेला बालक जेम पोताने पिता ने शोधे छे तेम अपने पड़ा संसार में भटके छे इस प्रकार मेला में खोया हुआ बच्चा अपने पिता को ढूंढता है उसी प्रकार हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं जो आपने अपना पिता समान भगवान ने ओळखी लिए अने तेनी साथे सेतु बांधी लिए तो आखी दुनिया अपनी छे जिस प्रकार अपने पिता के समान भगवान को पहचान ले और उसके साथ अपना एक सेतु का संबंध बांध ले तो सारी दुनिया अपनी हो जाएगी उपरोक्त शब्दों यूनिवर्सिटी रोड पर इस्कॉन पांडव सेना द्वारा योजन यूथ फेस्टिवल में खास उज्जैन की बदायला इस भक्ति चारू महाराज ने उच्चाया था ये शब्द इस कौन पांडव सिन्हा द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी रोड पर आयोजित कार्यक्रम में इस होली भक्ति चारू स्वामी महाराज द्वारा बोले गए यूनिवर्सिटी रोड पर रिया पार्टी प्लॉट में आज इस कौन पांडव सिन्हा द्वारा भव्य यूथ फेस्टिवल आयोजन करवामां आयो हतो आ यूथ फेस्टिवल में विदेशी रॉक म्यूजिकल ग्रुप द्वारा जोरदार रॉकिंग म्यूजिक परफॉर्म करवामां आव्यो हतो जेने माणवा माटे हजारों युवानों युवतियों उमटी पड़ा था विदेशी युवकों द्वारा कीर्तन परफॉर्म किया गया रॉक म्यूजिक परफॉर्म किया गया उसको देखने के लिए हजारों युवक और युवती की भीड़ वहां एकत्र हो गई थी अमेरिका रशिया अफ्रीका फिनलैंड और इंडियन सिंगर्स म्यूजिशियन द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धुन ने इस तरह से वेस्टर्न स्टाइल में रॉक म्यूजिक के साथ प्रस्तुत किया गया था कि लोग युवक और युवतियां झूम उठे थे इस प्रसंग में खास उज्जैन से पधारे हुए यूथ फेस्टिवल के प्रेरक बल एवं ऐसे भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने वक्तव्य में उन्हें बताते हैं कि कीर्तन का ही विशेष महत्व है अने तेने सांभळी ने तमे ज्यारे झूमी रहा था त्यारे मने आनंद थयो अने कीर्तन ज चालू रहेवा देवानी इच्छा थी और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आप लोग कीर्तन में झूम रहे थे उस प्रकार मेरी इच्छा हुई कि मैं कीर्तन ही चालू रखूं भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में जवा माटे ये मार्ग है इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए यही एक मार्ग है जीवन नो असली उद्देश्य भगवान साथे संपर्क साधवानो छे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क साधना है मेला में बालक गुम थई जाए तो ते पोताना पिता ने शोधे छे एक रीते अपने अपना पिता समान भगवान ने शोधवाना चाहिए। जिस प्रकार मेले में एक बच्चा खो जाता है और अपने पिता को ढूंढता है, उसी प्रकार हमको अपने पिता भगवान को ढूंढना है। जयरे मन से तेरे आपो विश्व आपू बने जैसे, जब ये मिल जाएंगे तो सारा विश्व अपना हो जाएगा। इस अरविंद भक्ति चरण महाराज इस कौन न स्थापक भक्ति विधान प्रभुपाद में सेक्रेटरी पर रह चुके थे। महाराज जी प्रभुपाद के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बीते एमटेक करे बाद संन्यास लई लेना राधेश्याम प्रभु पोता प्रवचन में जनाव्यू कि शरीर की आनंद बलवान नहीं। बीटेक और एमटेक ये संन्यास ब्रह्मचारी का वाहन ग्रहण भी राधेश्याम प्रभु ने बताया कि शरीर से आनंद मिलना नहीं है। ये आनंद शिरडी ने चाबा की आता आनंद जो है, ये आनंद गन्ने को चूसने जैसा आनंद है, ये सनातन थी, ये शाश्वत नहीं है। राधेश्याम प्रभु ने युवाओं ने ज्ञान और संयम भाव के उपदेश आपा था। राधेश्याम प्रभु ने युवकों को ज्ञान और संयम के विषय में उपदेश दिया। जयरे कोई बता गया भक्ति विनोद महाराज जनाव्यू कि यौवन ने उम्र साथ कोई देवा देवा नहीं। रोलिंद भक्ति विनोद स्वामी महाराज ने जो कोयम्बटूर से पढ़ा रहे थे, उन्होंने बताया कि यौवन का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भगवान पर युवा था, कृष्ण भगवान भी युवा थे। यूथ फेस्टिवल में शहर की शाला कॉलेजों की हजारों युवाओं और युवतियों उनकी पढ़ाया था। इस फेस्टिवल में शहर के हजारों युवक और युवती कॉलेजों से स्कूलों से इकट्ठा हुए थे। हरे कृष्ण।
So it looks like your program was successful. Very nice report. Which newspaper is this? ये कौन सी अखबार
है?
संदेश। ये गुजरात के यहाँ दैनिक भास्कर आती है, दैनिक भास्कर भी दीपो भाष उसका प्रचलन कैसा है? ये बड़ा है कौन? ये ज्यादा बड़ा है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जाय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जाय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जाय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जाय। गौर प्रेमानंदे हरि। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगो। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निष्ठा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मैं आज की क्लास हिंदी में देने का कोशिश करूंगा, ठीक रहेगा ना? क्या मैं इंग्लिश में दूंगा? English? Okay.
Hare Krishna, we dropped the mobile switch off.
मोबाइल किसके पास है? हाथ उठाइए, जेब से मोबाइल निकालिए, देखिए ये साइलेंट मोड में है या स्विच्ड ऑफ मोड में है। किसके फोन स्विच्ड ऑफ मोड में नहीं है? नहीं है, साइलेंट वॉच है, साइलेंट मोड में, साइलेंट और स्विच
मोड। खाली चाहिए अंदर जाओ, अंदर
तो हम आज श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का तीसरी श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक है निगम कल्पतरुण गलितं फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतो रसमालयम मुहुरह रसिका भूवि भावुका। आप भी बोलिए निगम कल्प तरो गलितं फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत रसमालयम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूवि भावुका। फिर से हैं और एक बार निगम कल्प तरोर गलितं फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतं रसमालयम मुहुरह रसिका भूवि भावुका। आपके दो
फलम शुक मुखारतम दर संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम रसिका भूवि भावुका।
और कोई
पीबत भागवत रसामलयम मुहर रसिका भूव भावुका।
ये श्लोक याद करने की कोशिश करेंगे, हाँ याद करने का तरीका कैसी है? फर्स्ट रिपीटेशन। अब मैं एक बार बोलूंगा, आप तीन बार बोलिएगा। निगम कल्प तरोर गलितं फलम निगम कल्प तरोर गलितं फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम शुक मुखाद अमृतं द्रव संयुतम पीबत भागवतम
पीबत भागवतम
रसमालयम्
रसमालयम् रसमालयम् रसमालयम्
पीवत भागवतम् रसमालयम्
पीवत भागवतम् रसमालयम् पीवत भागवतम् रसमालयम् पीवत भागवतम् रसमालयम्
मुहुरः
रसिका मुहुरः रसिका मुहुरः रसिका मुहुरः रसिका
भूविभावुका
भूविभावुका भूविभावुका भूविभावुका
मुहुरः रसिका भूविभावुका
मुहुरः रसिका भूविभावुका मुहुरः रसिका भूविभावुका मुहुरः रसिका भूविभावुका
अच्छा अब ये हर शब्द का अर्थ अगर हमें पता चलता है तो भी याद करने में आसान रहेगा। जैसे निगम का मतलब क्या है, निगम निगम का मतलब होता है वैदिक शास्त्र वेद। वेद का दो भाग हैं और दो मार्ग हैं, आगम और निगम, श्रुति स्मृति। जो श्रवण होता है सुनने के पश्चात जो हम सुनते हैं वो है श्रुति, और जब उसको उपलब्धि हो जाता है तो वो है स्मृति। सुनते हैं और याद करके अपनाते हैं, ये श्रुति और स्मृति, आगम निगम। तो वैसे साधारण रूप से निगम शब्द का अर्थ है वैदिक साहित्य या वैदिक शास्त्र। कल्पतरुर, कल्पतरु का मतलब है कल्प वृक्ष, जो वृक्ष हमारे पूरे चाहना पूरा कर सकते हैं। कल्पतरु आपको पता है जरूर, कल्पतरु क्या होता है? जैसे एक ऐसा साधारण वृक्ष जो होता है तरु या पेड़ है, उसे फल मिलता है। आम के आम का वृक्ष में से आम मिलता है, जामुन का वृक्ष से जामुन मिलता है, गुलाब का वृक्ष से गुलाब मिलता है, बल्कि कल्पतरु से क्या मिलता है, वहां जाके हम जो कुछ मांगते हैं वो मिल जाता है। ऐसे है कल्प वृक्ष। वैसे आध्यात्मिक जगत में वृंदावन में, वृंदावन तो वन है जहां हजारों करोड़ों वृक्ष हैं, और वहां के हर वृक्ष हैं कल्प वृक्ष। द्रुमा कल्प तरु, वहां का जो वृक्ष है द्रुम का मतलब वृक्ष, वो है कल्प तरु। केवल एक दो नहीं, लाखों करोड़ों वृक्ष जो हैं वृंदावन का वन में, सब है कल्प वृक्ष। वैसे ही वेद जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। मतलब कल्प वृक्ष के पास जाके हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है, वैसे ही वेद के पास जाकर हम जो कुछ मांगेंगे हमें। अगर हम वेद को अनुगमन करते हैं तो हमारे कोई भी वासना अपूर्ण नहीं रहेगी। वेद को हम अगर सही रूप से अनुगमन करते हैं तो हमारे सारे वासनाएं पूर्ण हो जाए। इसलिए वेद को, वैदिक साहित्य को कल्प वृक्ष के समान माना गया है। निगम कल्पतरुर। अच्छा, कल्पतरु का जो फल है, कल्पतरु तो वेद है एक कल्प वृक्ष जैसा, और उस कल्प वृक्ष का फल देखिए, जिस वृक्ष के पास जाकर हम जो कुछ मांगते हैं वो मिल जाता है, तो वो वृक्ष का फल कितना महान हो, कितना बेहतर होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। तो ये जो श्रीमद् भागवत का वर्णन यहां हो रहा है, श्रीमद् भागवत कैसी है, श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत है वेद का जो फल, वेद रूप कल्पवृक्ष का जो फल है। कल्पवृक्ष के पास जाकर हम मांग जो मांगते हैं वो उसे हम प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो वैदिक, तो जिस पेड़ के, जिस वृक्ष के पास मांगने से हमारा वासना पूर्ण हो जाता है, उसका फल ना जाने कितना सुंदर। निगम कल्पतरुण, और वो फल कैसी है? गलितम फलम, केवल फल ही नहीं, एकदम सुंदर रूप से पका हुआ फल, गलितम फलम। निगम कल्पतरुण गलितम फलम, और तत्पश्चात वो फल शूक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शूक का मतलब है चिड़िया। ऐसे कहावत है कि जब कोई चिड़िया कोई फल को चाखते हैं, मतलब उसका जो चंचू से जब ये ठुकराता है तो फल और भी अधिक मीठा होता है। और यहां सुख कौन है? श्रील सुखदेव गोस्वामी। ये निगम कल्पतरुण गलितम फलम, वेद रूप कल्प वृक्ष का जो सुपक फल, वो सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से युक्त हुआ है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवतम को सुनाए थे। यद्यपि भागवतम का प्रणेता है व्यासदेव, बल्कि उनका पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये भागवतम सुनाए थे, इसलिए ये भागवतम और भी मधुर बन गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संगीत पीवतन, ये जो अमृत रूप जो भागवतम है उसको कौन पीते हैं? पीवतन भागवतम, इस भागवत को कौन? जो रसम आलयम, ये भागवत जो रस के आधार है, सारे रसों का जो स्रोत है, ये भागवतम कौन पीते हैं? मुहुरह, मुहुरह, महु मुहु का मतलब है निरंतर, हर समय, केवल पीते ही नहीं हर समय पीते हैं। कौन? मुहुरह, जो रसीक है, जो रस आस्वादन करने वाला है, जो नीरस है। आदमी में ऐसा होता ना, जो रस का जो समझता नहीं है, जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जो रस आस्वादन नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये भागवतम नहीं है। ये भागवतम को आस्वादन करने वाला कौन है? ये भागवतम रूप, भागवतम रूप जो अमृत, इसको आस्वादन करने को लायक कौन है? रसिका, रसिका, रसिक शब्द का अर्थ होता है रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले, रसिक जन, रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन। मुहुरह रसिका भूभी भावुका, अर्थात भूभी मतलब इस पृथ्वी पर जो विचारवान भावुका है, पटु तथा विचारवान। तो ये श्लोक का अर्थ समझ गए हैं आप। भागवतम क्या है? वेद रूप कल्प वृक्ष का एकदम सुंदर रूप से पका हुआ फल, और उस फल सुखदेव गोस्वामी का मुख अमृत का मुखामृत से युक्त हुआ है। इसलिए ये भागवतम और भी मधुर बन गया है। और इस भागवतम को निरंतर कौन आस्वादन करते हैं? जो व्यक्ति रसिक हैं, विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं और तत्वज्ञानी हैं। तो आप फिर से हम कोशिश करते हैं, तो आप देखिए निगम कल्प तरुर गलितंग फलम, मतलब क्या हुआ? निगम का मतलब क्या है, किसको याद है? वैदिक शास्त्र। निगम कल्प तरुर गलितंग फलम, वेद रूप कल्प वृक्ष का बहुत सुंदर पका हुआ पूर्ण रूप से परिपक्व फल। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से ये भागवतम युक्त हुआ है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम मिला हुआ है, संयुतम संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम और उसके पश्चात पीवत भागवतम रसमालयम, ये रस के जो आलय, रस के आलय मतलब रस की आधार, ये रसमालयम रूपी भागवतम कौन आस्वादन करते हैं? रसिक जन। कैसे? निरंतर मुह रहा रसिका। अब देखिए, अब याद करने में थोड़ा सा आसान रहेगा शायद। निगम कल्प तरुर गलितं फलम, और एक बार अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पीवत भागवतम रसमालयम, मुहुरह रसिका भूवि भावुका। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, द फर्स्ट स्टेप इज रिपीटेशन। रिपीटेशन का हिंदी क्या है? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, फिर बार बार बोलना, रिपीटेशन। तो ये है रिपीटेशन है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इस श्लोक का अर्थ समझना, अर्थ समझने के बाद फिर रिपीटेशन। पहले अगर हम अर्थ समझ लिया तो और भी अच्छा होता है, बल्कि रिपीटेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया है, इसलिए। नहीं तो जैसे ब्रेन टेप रिकॉर्डर जैसे हैं, टेप रिकॉर्डर कितनी बार सुनते हैं? एक बार सुन के टेप कर लेता, मतलब याद कर ले, याद में रख लेता है। हमारा ब्रेन भी वैसे एक टेप रिकॉर्डर था, है भी, बल्कि टेप रिकॉर्डर का जब टेप हेड खराब हो जाता है तब क्या होता है? तब सही रूप से रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो हमारा जो रिकॉर्डिंग हेड वो खराब हो गया है। खराब हो जाने के कारण हमारा याद सही रूप से नहीं रहता। नहीं तो पहले जमाने में आपको शायद पता है। अच्छा, वंस अगेन, किसके पास मोबाइल फोन है? हाथ उठाइए, मोबाइल फोन पकड़िए, मोबाइल फोन को देखिए, कौन सी मोड में है, किसकी फोन ऑन में है, ऑन। अच्छा, और जो जिसके फोन ऑन में है उसको क्या साइलेंट मोड में है? किसके फोन ऑन में है और साइलेंट मोड में नहीं है? ओके अब अगर फोन रिंग होगा तो पेनल्टी देना होगा हाँ? और पेनल्टी रहेगा संडे फीस तो चूंकि हमारे रिकॉर्डिंग हेड खराब हो गए हैं इसलिए हमें बार बार उसको रिपीट करना होता है। नहीं तो पहले जमाने में आपको शायद याद है कि पहले जमाने में वो लिखने का प्रचलन नहीं था। लिखने का प्रचलन केवल 5000 साल पहले ही हुआ है। इसके पहले लिखने का जरूरत नहीं होता था। क्यों? क्योंकि एक बार सुनने से ही उनको याद रहता था। उनका मेधा, उनका स्मृति शक्ति इतना प्रबल था कि एक बार केवल सुनने से ही बस याद रह जाता। तो इसलिए हम ये रिपीटेशन के लिए बार बार बोलते हैं कि रिपीट करने से याद रहेगा। जैसे रहता है ऐसे तो एक बार सुनने से तो हमको याद नहीं रहता बल्कि बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। तो रिपीटेशन के पश्चात हमें याद रखने का कोशिश करना होगा कि श्लोक का एक श्लोक, हर श्लोक का चार लाइन होती है, ये छंद है। दो लाइन भी होता है बल्कि दो लाइन को भी चार लाइन में भाग किया हो। तो ये पहला लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। तो पहले लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है वो अगर याद रहेगा तो श्लोक आसानी से हमको याद आएगा। तो इस श्लोक का पहला शब्द क्या है? वेरी गुड। तो ये निगम जब याद आ गया तब बाकी लाइन आ रहा है। बताओ तो। वेरी गुड। इट सीम्स लेडीज आर डूइंग मच बेटर देन निगम कल्पतरुण गलितं फलम। अच्छा, सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? वेरी गुड। शुक मुखाद। तो बाकी लाइन याद आ रहा है? शुक मुखाद। वेरी गुड। शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम। तीसरी लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? पीवत भागवतम रसमालय। देखिए ये फर्स्ट, ये केवल लाइन का प्रथम शब्द अगर याद आ जाता है तो बहुत ही आसानी से बाकी लाइन का यादगार होता है। पीवत भागवतम रसमालयम। और फोर्थ लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? मुहुरह रसिका भूवि। तो वैसे इसको अगर बार बार हम उच्चारण करते गाते हैं, गाना भी जरूरी है। इसके फोर्थ स्टेप इज टू सिंग। ये आप इसको अगर सुर लगाते हैं इस श्लोक को, जैसे अपना सुर तैयार करके, अपना सुर, यू गिव योर ओन ट्यून टू दिस। Subal Sam, do you want to give it a try? Give your own tune. Acha, kisko line? Yeah, ye dikhao. Look at it and.
Nikam kalpa taru galitam sabram se maafi se.
हाँ ठीक है, बोलते रहो।
सुखम खार अमृतम रोग समुद्रम पवित्र भागवतम रसम पादयम्
रसिका
रसिका भूमि भूमि भावतम्।
वेरी गुड। और कोई गाना चाहते हैं? हाँ, ओके, यू सिंग।
निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखोरवृतं द्रवशयुतम् पीबत भागवत रसमालयम् मुहुरहारसिका भुवि भावतम्।
Very good. The boys said it very well. Now let's see how the girls said it. Who will do it? Rupal, you want to sing?
Nigam kalpataru galitam phalam.
Nigam kalpataru galitam phalam.
Shukamha amritam darsambitam.
Shukamha amritam darsambitam.
पीबतम भागवतम रसमालयम्
पीबतम भागवतम रसमालयम्
मुहुररसिका भुवि भावता
मुहुररसिका भुवि भावता।
ओके, एनीवन एल्स?
रूपल
रूपल या
निगम कल्पतरु गलितं फलम्
निगम कल्पतरु गलितं फलम्
सुखमुखादमृतं द्रवसयुतम्
सुखमुखादमृतं द्रवसयुतम्
कृतं भागवतं रसमालयम्
रसमालयम्
मुहुररसिका भुवि भाविका
मुहुररसिका भुवि भाविका।
वेरी गुड। In this way, you can give your own tune. But one thing I noticed, that everyone is singing in the same tune. Mitra Brinda, do you want to give it a different tune? How to give a different tune? You start with a different note. Then you'll get a different tune.
Nigama kalpataru गलितं फलम् सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतम् पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुररसिका भुवि भावका।
वेरी गुड। सो आप देखिए, ऐसे ये फोर स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप श्लोक याद रहेंगे। अच्छा, इस प्रकाश है प्रकाश, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कल प्रकाश में कह रहा था को प्रकाश का श्लोक याद नहीं रहता। तो प्रैक्टिस करके दिखाओगे आप? तो प्रैक्टिस नहीं किया तो कैसे होगा? कम यह कम है। नॉट डन
सुबह श्याम
राधे श्याम प्रभु की
जय।
निगम
कल्पतरुगलितं फलम् शुकमुखतम् नितं संयतम् पिबत भागवतं रसमलायम्
तो ये चार स्टेप जो मैं बताया याद है, प्रैक्टिस करोगे? अच्छा, नेक्स्ट वीक हम मैं पूछूंगा तुमको कितने श्लोक, 7 दिन में 7 श्लोक याद करना चाहिए। ये प्रैक्टिस अगर ऐसे करोगे तो बहुत ही आसानी से तुम कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो मैं बोलूंगा, नो, फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द मीनिंग श्लोक का, हर शब्द का। इसलिए प्रभुपाद क्या किए हैं, हर शब्दों का अर्थ विश्लेषण किया है, किए हैं। निगम शब्द का मतलब क्या है, ये अगर हमको पता चलता है हर शब्द का, तो हम ये श्लोक जब समझ लेते हैं तो उसको याद करना भी आसान रहता है। नहीं तो अगर हमें पता नहीं रहता है कि ये विषय क्या है, किस बारे में ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ क्या है, ये अगर ना जानकर हम अगर याद करने का कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले ही श्लोक का अर्थ समझ लेना चाहिए। अच्छा, समझ उसके पश्चात रिपीट करना चाहिए। मैं जो बोला, ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है वो एक टेप रिकॉर्डर जैसा है। टेप हेड अगर अच्छा रहेगा तो एक बार सुनने से ही याद रह जाएगा, क्योंकि ये मेमोरी, जो स्मृति, ये एक शक्ति है, ये उसको धारण कर सकता है, शब्द को, शब्द को, शब्द का अर्थ को, शब्द का भाव को हम याद कर, ये हमारा स्मृति वो अपनाता है। तो इसके पश्चात थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, विषय जो है वो हर लाइन का पहला शब्द। अच्छा, पहला शब्द ये किसको पता है, किसको याद है, इस श्लोक का पहले लाइन का पहला शब्द? नहीं, कौन बल? हाँ, अच्छा, कैन यू टेल मी द रेस्ट ऑफ द लाइन, व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? निगम। एंड कैन यू रिमेम्बर द रेस्ट ऑफ द लाइन? निगम, या सो यू गॉट इट, निगम कल्पतरु गलितम फलम, राइट? जब पहला शब्द का जब याद आता है तो आसानी से बाकी लाइन भी याद आ जाता है। निगम, निगम मन में आते ही बस बाकी लाइन आ गया है, निगम कल्पतरु गलितम फलम। इसके बाद दूसरा लाइन का पहला शब्द क्या है, किसको याद है, हाथ उठाइए। ओके, यू गिव द रेस्ट ऑफ द लाइन। शुकमुखाद, नहीं, शुकमुखाद अमृतम द्रव संयुतम। अब बताओ तुम, शुकमुखाद तुम रिपीट किया था? अच्छा, फिर केवल तुम बताओ, तीन, मैं एक बार बोलूंगा, तुम तीन बार बोलोगे। सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम,
सुख
मुखाद अमृतम
द्रव्य संयुतम। अब बताओ, अमृतम द्रव्य संयुतम।
देखो, थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड किसको याद है? ओके, जूही, ओके, ठीक ठीक है, जूही बताए, तुम बता, पहला शब्द क्या है? हाँ, स्वाति। अच्छा, पीव, फर्स्ट वर्ड क्या है? पीवत। बाकी लाइन याद आ गए, बताओ। वेरी गुड, पीवत भागवतम रसमालयम। और फोर्थ लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? आप बताइए। अच्छा बाकी लाइन बुहुर। अच्छा किसको याद है पूरा लाइन? वेरी गुड। बुहुर रसिका। अच्छा तुम तीन बार बताओ। आप बताओ। बस तो अब पूरा श्लोक याद आ गया। अच्छा मैं अब एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट ये करेंगे, स्टेप लेंगे। पहले तो हम एक लाइन बताया, अब दो लाइन किसको याद होगा? निगम याते ही पहले दो लाइन किसको याद रहेगा आपको? आप बताइए पहला शब्द क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड। तो तीसरी लाइन पे बता दीजिए। और चौथा? अच्छा वेरी गुड। तो ये आसान होता है वो एक एक लाइन का प्रथम शब्द याद रहने से। तो ऐसे तो ये जो तरीका इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से श्लोक याद हो रहा है। ये प्रैक्टिस कौन करेंगे हर रोज एक एक श्लोक? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और हमें बताना इससे कुछ फल हो रहा है क्या नहीं, कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। निगम कल्प तरोर गलितं फलम शुक मुखाद अमृतं द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर रसिका। इस श्लोक का अर्थ है हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्क फल श्रीमद् भागवत को जरा चाखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है, अतएव ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीव समेत समस्त जनों के लिए पहले से आश्वाद था। आप भी बोलिए हे विज्ञ एवं भावुक जनो, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्क फल श्रीमद् भागवत को जरा चाखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आश्वस्त था। तो यहां वर्णन हो रहा है श्रीमद् भागवत का, ये शुरुआत है। श्रीमद् भागवत अब शुरू हो रहा है, ये भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का तीसरे श्लोक है। इसमें भागवत का वर्णन हो रहा है, श्रीमद् भागवतम का वर्णन हो रहा है। श्रीमद् भागवतम क्या है तो इसका वर्णन करते हुए क्या वर्णन हुआ है? श्रीमद् वेद रूप कल्प वृक्ष का सुपक्क फल है ये श्रीमद् भागवतम। और ये भागवतम, ये फल रूप जो श्रीमद् भागवतम है, ये सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद का अमृत से युक्त हुआ है, इसलिए भागवतम और भी आश्वाद्य हो गया है, और भी मधुर हुआ है। और इस भागवतम को कौन इस रस को कौन आस्वादन करते हैं? कौन करते हैं? रसिक जन और भावुक। भावुक का मतलब जो जिसको भाव है। दो शब्द यहां आता है, एक अभाव। अभाव शब्द हिंदी में, अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। तो अभाव का विपरीत है भाव, मतलब जिसके पास सब है। किसके पास सब कुछ होता है? किसके पास सब कुछ होता है आप बताइए? जो अमीर है उसके पास सब कुछ होता है? नहीं। किसके पास सब कुछ होता है? विचारवान। ठीक है, किस विचार के विचारवान? जो जिसके पास भगवान है वो है भाव, उसका अभाव नहीं है। जिसके पास भगवान है मतलब जो भगवान के शरण लिए हैं उसको अभाव नहीं रहता है। तो इस सिलसिले में दो शब्द आया, एक तो भावुक और एक रसिक। तो जो भगवान को जानते हैं उसको अभाव नहीं रहता है, उसको क्या रहता है? भाव। ये भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं मनोभाव, मन की भावन भाव। तो ये भाव जो है ये इसका मतलब है भगवान के साथ संपर्क, प्यार का संपर्क। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग का शुरुआत होता है कैसे? आदो श्रद्धा। श्रद्धा से क्रमिक रूप से उसका वृद्धि होता है। आदो श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया, इसके पश्चात अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान के पास साथ जो प्यार का संपर्क जब बनता है उसे भाव कहता है, मतलब भगवान के प्रति जो भावना, भगवान के प्रति जो अनुभूति। ये देखिए, ये भावना, अनुभव, अनुभूति, ये सब, ये शब्द सब भाव से ही इसका उत्पत्ति हुआ है। और जो जिसको भाव है वो है भावुक। और भगवान के साथ जब संपर्क बनता है वो संपर्क किसके आधार पर बनता है? संपर्क जो बनता है किसके आधार पर बनता है? रस के आधार पर बनता है। रस, ये रसगुल्ला का रस नहीं है। ये कौन सी रस है? ये भक्ति रस है। भक्ति रस संपर्क का रस। संपर्क, संपर्क बनता है पांच रसों के आधार पर। वो रस है, रसों हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। जो ही जही भी जहां भी संपर्क हो ये पांच रस के आधार पर, विशेष रूप से दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये चार रस के आधार पर। जो ये रस को जानते हैं वो है रसिक। भागवतम का रस आस्वादन कौन कर सकते हैं? जो भगवान का भक्त है, जो भावुक है, जो भाव प्राप्त हो चुके हैं वही केवल भगवत भक्ति का रस आस्वादन कर सकते। तो मुहुरह रसिका भूभी भावुक। और ये रस इतना मधुर है कि ये एक बार चाखने से बारंबार इसको चाखने का इच्छा होता है। इसलिए मुहु, मुहु का मतलब क्या होता है? निरंतर, हर समय। जो अच्छा, जो वस्तु, जो कार्य हमें अच्छा लगता है वो हम क्या करना चाहते हैं? बार बार हम उसको आस्वादन करना चाहते हैं। तो भक्ति रस इतना ही मधुर है कि जो इसका रस प्राप्त हो चुके हैं उन्होंने बारंबार इसको आस्वादन करना चाहते हैं। मुहुरह रसिका भूभि भावुका। इस श्लोक के तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है तो हम उसको थोड़ा विचार यहां करेंगे। पिछले दो श्लोकों में से ये निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद्भागवत दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। ये समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे हैं। ये समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है अपितु ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में ये सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत या अर्थात सार है। ये सब दृष्टि में रखते हुए ये समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम का तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि सारे वैदिक शास्त्र में श्रीमद् भागवत ही है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भागवतम ही है सारे वेदों का जो तत्व है उसका सार निचोड़। वेद विशाल है, भूरिणी भूरि कर्मा, भूरिणी वेद है तो विशाल, और उस वेद में भूरि कर्मानी बहुत सारे कार्य बहुत सारे आचरण का निर्देश दिया गया है। भूरि कर्मानी बहुत सारे कर्म के अनुष्ठान करने का निर्देश दिया गया है, अर्थात ये विशाल वेद जब तक हम पूर्ण रूप से उसको हम नहीं समझते हैं तब तक वेद का जो असल उद्देश्य वो हम समझ नहीं पाएंगे। इस सिलसिले में जैसे यहां वेद को कल्पतरु के साथ वेद का तुलना हुआ है, वैसे ही गीता में और गीता महात्म्य में एक श्लोक है वो भी ऐसा ही है। उसका उदाहरण उसमें वर्णन किया गया है कि वेद या उपनिषद है एक गाय की तरह। तो गाय का तात्पर्य क्या होता है, गाय पालने का उद्देश्य क्या होता है, दूध प्राप्त हो। तो इस सिलसिले में बताया गया है कि उपनिषद सारे उपनिषदों हैं एक गाय की तरह, और उस गाय को दोहन करने वाला है गोपाल कृष्ण। गाय को पालन करने कर गाय को रखवाला जो गोपाल हैं वो गाय को दोहन कर रहे हैं। गाय क्यों दूध देती है, बछड़े के लिए दूध देती है। वो बछड़ा कौन है, अर्जुन, और दूध क्या है, भगवत गीता है उस गाय का दूध। तो केवल गाय मिलने से ही नहीं चलेगा, गाय मिलने से या गाय प्राप्त होने से या गाय को रखने से ही हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। दूध प्राप्ति के माध्यम गाय रखने का उद्देश्य सफल होता है। हम कभी ऐसा कोई गाय रखते हैं जो दूध नहीं देती है, रखना चाहिए गाय को जो दूध दे चुके हैं पहले, उस गाय को भी रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। बल्कि कहने का मतलब ये है कि गाय को रखने का उद्देश्य होता है दूध। तो वैसे ही गाय रूपी वेद का जो सार निचोड़ जो है दूध, वो है भगवद गीता। एक दृष्टिकोण से उपनिषदों के माध्यम आया है भगवद गीता, इसलिए वर्णन हुआ है सर्व उपनिषदों गावो, सारे उपनिषदों हैं गाय जैसे। और यहां भी निगम कल्प तरूर गलितम फलम, वेद रूप कल्प वृक्ष का सुपक फल जो है, जैसे पेड़ से वृक्ष से हम क्या प्राप्त होना चाहते हैं, फल, तो वैसे ही वेद रूप वृक्ष से हम जो फल, अर्थात वो फल कौन सी फल है, या गाय का दूध कौन सी दूध है, दिव्य ज्ञान रूप है इसका फल। तो ये फल प्राप्त होना ही वेद का उद्देश्य है। तो हमें इस फल प्राप्ति के प्रयास करना हो, केवल वेद रूप वृक्ष रखने से फायदा नहीं होगा, एक गाय रखने, उपनिषद रूप गाय रखने से फायदा नहीं, उपनिषद पाठ करने से फायदा नहीं होगा, केवल वेद पाठ करने से फायदा नहीं होगा, हमें गीता को समझना पड़ेगा, हमें भागवत को समझना पड़ेगा। जब हम गीता पाठ करते हैं तो क्या याद आता है, क्या हम समझते हैं, यहां आप कौन कौन गीता पाठ कर रहे हैं हाथ उठाइए, जो नियमित रूप से भगवत गीता पाठ करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो गीता आप पाठ कर रहे हैं, तो गीता का उद्देश्य क्या है, किसको याद है, ये गीता आप क्यों पाठ करते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए। और दिव्य ज्ञान का मतलब क्या होता है, किसके प्रति भक्ति, कैसे भक्ति का प्राप्ति होता है, भक्ति भगवान को पहले हमको जानना होता है, भक्ति का मतलब होता है प्यार। यद्यपि हम भक्ति शब्द का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, बल्कि भक्ति का असल उद्देश्य होता है प्रेम, प्यार, भगवान के साथ प्यार के संपर्क को ही भक्ति माना जाता है। तो ये भक्ति अर्थात जो प्रेम, प्रेम हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं, पहला कदम प्रेम के लिए क्या होता है, उसको हमको जानना होता है, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हम प्यार कैसे करेंगे। अच्छा, जानने के पश्चात प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, प्रेम का प्रकाश कैसे होती है, आकर्षण के द्वारा, प्रेम है आकर्षण, है ना। और आकर्षण क्यों होता है, कोई विशेष गुण के, गुणों के कारण आकर्षण होता है, जैसे हम आकर्षण सुंदरता के प्रति आकर्षण होता है, जो बहुत सुंदर है उसको देखते ही हमें उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, है ना। तो आकर्षण का भी कारण छह प्रकार होता है, एक तो है सुंदरता, एक है ओ अच्छा आई एम सॉरी आई डेंट रियलाइज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई एम ट्राइंग टू लर्न हिंदी, ओके या सुभाष शर्मा यू कैन ट्रांसलेट, मे बी यू कैन कम ऑन दिस साइड, you sit on this side with you. तो ये आकर्षण का कारण छह प्रकार होता है, एक है सुंदरता, एक है शक्ति। जैसे जो बहुत पहलवान है, जो बहुत वीर है, जो हीरो है, उसके प्रति आकर्षण होता है। एक है संपदा, जिसके पास दौलत होता है उसके प्रति भी आकर्षण होता है। यश, जिसको बहुत नाम है, यश है, उसके प्रति आकर्षण होता है। ज्ञान, जिसको बहुत ज्ञान है उसके प्रति आकर्षण होता है। और त्याग, जिनके पास त्याग है, जो बहुत त्यागी है, उनके प्रति भी आकर्षण होता है। तो ये आकर्षण का छह कारण है। तो देखिए, प्रेम और आकर्षण दे आर इंटरलिंक्ड। आकर्षण के कारण प्रेम होता है। आकर्षण का विरूप क्या है? विकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जिससे हम रिपल्स्ड होते हैं, जो देखने में बहुत खराब है, उसके प्रति क्या हम आकृष्ट होते हैं? उसको हम, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है? नहीं। अगर उनमें और कुछ गुण है तो हो सकता है, चाहे जैसे कितना, चाहे देखने में कितना भी कुत्सित हो, बल्कि अगर उसके पास बहुत पैसा है तो बहुत सारे आदमी उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। देखने में भी कुत्सित है, रुपया भी नहीं है, बल्कि उसके बहुत शक्ति है, उसके प्रति हम आकर्षण होते हैं। बल्कि कृष्ण में, भगवान में ये छह गुण पूर्ण रूप से है। भगवान पूर्ण सुंदरता से पूर्ण, पूर्ण सुंदरता भगवान में है, पूर्ण संपदा भगवान में है, पूर्ण वीर्य शक्ति भगवान में है, पूर्ण यश भगवान में है, पूर्ण ज्ञान भगवान में है, और पूर्ण त्याग भगवान में है। तो इसलिए भगवान को ये गुण में, जब गुणों को जब हम समझते हैं, या गुणों को जब हम, गुणों के बारे में जब हम जानते हैं, जान लेते हैं, तो स्वतः ही भगवान के प्रति आकर्षण होता है। तो इसलिए भगवान ही है प्रेम आस्पद। प्रेम का मूल केंद्र है भगवान। हम सब भगवान, हम सब, हमारे दिल में, हृदय में जो प्रेम है वो किसके प्रति अर्पित होना चाहिए? भगवान। तो हमारा हृदय का प्रेम जब भगवान के प्रति अर्पण होता है तो उसे भक्ति कहा जाता है। इसका भी, ये शब्द का भी और एक विशेषता है। भक्ति शब्द का उत्पत्ति हुआ है भज से। भज का मतलब होता है सेवा, सेवा। प्रेम और प्रेम का जो प्रकाश, प्रेम का जो अभिव्यक्ति है, प्रकाश जो है, वो होता है सेवा के द्वारा। केवल प्रेम मुंह से बोलने से ही नहीं होता है, करके दिखाना होता है। अगर करके नहीं दिखाते हैं तो हम मानते नहीं है कि प्रेम। कोई आदमी बोलता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, बल्कि काम में कुछ नहीं करते हैं, केवल बोलते हैं प्यार करता हूं, तो वो प्रेम को कोई कुछ विशेषता नहीं प्रदान करेगा। जैसे एक दृष्टांत हम ऐसे विचार कर सकते हैं, जैसे अपने संतान के प्रति, अपने बच्चे के प्रति मां का प्रेम रहता है। मां क्या कभी बच्चा को बोलता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं? बोलने की जरूरत होती है मां क्या ना, क्या मां कभी बोलते हैं? तो माँ कभी माँ को बोलने का जरूरत नहीं होता है, बच्चा भी समझता नहीं, बल्कि माँ सुबह से शाम तक क्या करती है, बच्चे के लिए सब कुछ कर देती है। तो माँ का प्रेम जो बच्चा का प्रति है उसका प्रकाश कैसे होता है, इस कार्य के द्वारा, यो है सेवा। तो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो सही रूप से उसका प्रकाश कब होगा, जब हम भगवान के लिए कुछ करना चाहें। तो ये भगवान के लिए कुछ करने का जो इच्छा, इसको ही इसको प्रेम कहा जाता है या भक्ति कहा जाता है। भागवतम में भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान हुआ है। देखिए पहले हम विचार किया था, अगर हम नहीं जानते हैं तो उसको उसके हम प्यार नहीं कर सकते, प्यार के लिए हमें पहले उनको जानना पड़ेगा। तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, गीता के माध्यम थोड़ा बहुत जान सकते हैं, बल्कि भागवतम के माध्यम भगवान को हम पूर्ण रूप से जान सकते हैं। गीता में भगवान खुद अपने बारे में बोल रहे हैं, बल्कि भगवान सही रूप से वर्णन नहीं किए हैं आपके बारे में। भगवान का पूर्ण विकास, पूर्ण प्रकाश, भगवान का पूर्ण परिचय श्रीमद् भागवत में हो रहा है, इसलिए श्रीमद् भागवतम इतना जरूरी है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि और कोई शास्त्र में, बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद विशाल हैं, वेद में बहुत सारे निर्देश दिया गया है, बल्कि वेद में भगवान का पूर्ण परिचय सही रूप से प्रकाश नहीं किया गया। वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद, वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु का मतलब वेदों में, बहुवचन, सारे वेदों में, वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभ मतलब वेद के माध्यम हम भगवान को नहीं प्राप्त हो सकते, वेद के द्वारा, वेद के माध्यम भगवान सुलभ नहीं है, भगवान लभ्य नहीं हुआ, भगवान दुर्लभ रह गए, वेदेषु दुर्लभम, बल्कि अदुर्लभम आत्मभक्त, बल्कि जो भगवान को भक्त बन चुके हैं, भगवान को भक्त बने हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ नहीं, अदुर्लभ है। तो श्रीमद् भागवत में जो वर्णन हुआ है वो भक्ति मार्ग में प्रवेश करके भक्ति मार्ग में स्थिर होने का सही तरीका है। ये इसलिए श्रीमद् भागवतम को निगम कल्पतरुर गलितंग फलम के रूप में वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम जब मंदिर में जाके भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान का विग्रह का, वो क्या भगवान है या नहीं? भगवान मंदिर में भगवान का विग्रह स्वयं भगवान ही है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत भी स्वयं भगवान है। मंदिर में जब हम भगवान को विग्रह का दर्शन करते हैं, उस विग्रह का 12 अंग रहता है, भागवतम में भी 12 अंग है। 12 अंग क्या है? पहले तो दो पैर, इसके पश्चात दो जानू, इसके पश्चात पेट, छाती, दो हाथ, कंठ, श्रीमुखार मुख, कपाल और सिर। कितना हुआ है? 12 ना? तो एक दो, पहला दो स्कंद, प्रथम और द्वितीय स्कंद, है भगवान का श्रीपद कमल, चरण कमल। दो चार, तीन और चार चौथे स्कंद है भगवान का थाई, जंघा या उरु, जानू। पंचम स्कंद है उदर, पेट। षष्ठ स्कंद है बक्ष। सप्तम और अष्टम स्कंद है दो हाथे। नवम स्कंद है कंठ भगवान। दशम स्कंद है भगवान का मुखारवंद। एकादश स्कंद है कपाल और द्वादश स्कंद है भगवान का सिर। तो ऐसे बारह स्कंद में भगवान का प्रकाश हुआ है। शरीर में बहुत सारे अंग प्रत्यंग हैं, बल्कि उसमें से सबसे प्रधान कौन सी है? मुंह। हाथ देखकर पता नहीं चलता है वो व्यक्ति कौन है, पैर देख के पता नहीं चलता है कौन है, पैर देख के पता नहीं चलता है कौन है, बल्कि मुख देख के पता चलता है। तो इसलिए ये दशम स्कंद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दशम स्कंद ही भगवान का मुखारविंद है। श्रीमद् भागवत में यद्यपि बारह स्कंद हैं, बल्कि दशम स्कंद ही प्रधान है और ये बहुत विस्तृत है, विशाल है। तो इस ऐसे भागवत के माध्यम भगवान को दर्शन करना होता है। जब हम भागवत के माध्यम भगवान को दर्शन करते हैं तो हम सही रूप से भगवान को पहचान ले सकते हैं, और भगवान को पहचानने से भगवान के प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से ही प्रकाश होता है, प्रकट होता है। जैसे एक युवक जब एक सुंदरी युवती को देखते हैं तो उसका मनोभाव कैसा होता है? उसके सुंदरता के कारण स्वाभाविक रूप में आकर्षण होता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता है, देखो तुम एक जवान लड़का हो, ये एक जवान लड़की है, तुम दोनों को बीच प्यार होना चाहिए, बोलना पड़ता है नहीं, स्वाभाविक रूप से ही आकर्षण बन जाता है एक दूसरे के प्रति। तो वैसे ही जब हम भगवान को पहचान लेते हैं, भगवान के बारे में जानकारी होता है, तो स्वतः ही भगवान के प्रति आकर्षण होता है, और वो आकर्षण ही है प्रेम, और उस प्रेम ही का नाम है भक्ति, क्योंकि उस प्रेम के कारण हम भगवान के लिए हर समय कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये जो सेवा, ये सेवा का नाम है भक्ति, और इसका पूर्ण वर्णन विस्तृत प्रकाश हुआ है श्रीमद् भागवत में। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है किसी को? डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? गिव द कॉर्डलेस। ओ अच्छा, देयर इज अ माइक देयर।
या जिस प्रकार भागवतम या भगवत गीता पढ़ते हैं तो श्लोक पढ़ने में मतलब तकलीफ होता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो केवल हिंदी का मीनिंग और तात्पर्य पढ़े तो क्या सही है, क्या श्लोक पढ़ना चाहिए?
पहले अगर श्लोक पढ़ने में दिक्कत होता है तो वो जो हिंदी ट्रांसलेशन है या इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो पढ़िए और तात्पर्य पढ़िए, ठीक है? क्योंकि देखिए, असल बात तो ये है कि जानकारी होना चाहिए, जैसे जानकारी होता है उसका ही प्रयास करना होगा। केवल श्लोक ही कंठस्थ करने से फायदा नहीं है, श्लोक का अर्थ और वैशिष्ट्य भी उसके साथ साथ हमें समझना होगा।
श्री कृष्ण भगवान आपने जैसे बोला कि अवर ब्रेन इज लाइक टेप रिकॉर्डर, उसका जो हैबिट है वो फिर क्या है, वो आपको हेड तो रिप्लेस ही किया जाता है
केवल हेड ही नहीं पूरा बॉडी का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है वो समय पर वो भी होगा। बल्कि हमें भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए कि नेक्स्ट बॉडी में टेप रिकॉर्डर टेप हेड सब एकदम सही रूप से रहे, इस शरीर जैसा एक टूटा फूटा शरीर हमें ना मिले। और जितना ही हम भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे उतना ही दिव्य भाव जो है गुण जो है उसका प्रकाश होता रहेगा। हरे कृष्णा, एनी अदर क्वेश्चन? मुकुंद प्रिया
जैसे हाथ रखा, जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ रखा तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि हम देखते हैं कि उससे पहले भी प्रहलाद महाराज जब अपने असुर सहपाठियों को शिक्षाएं देते हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान से पूरित है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
हाँ देखो, ज्ञान का भी दो प्रकार होता है, एक ज्ञान का जानकारी और एक है उपलब्धि। जैसे मतलब थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, उनका जो उस समझना होगा कि प्रहलाद महाराज जो ज्ञान प्रदान कर रहे थे वो उसका ये था, जानकारी था उन ज्ञान का, बल्कि पूर्ण उपलब्धि तब हुआ जब ऋषिंगदेव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा था, तब उनको जैसे देखो थियोरेटिकल ज्ञान की माध्यम हम बोलते हैं प्रचार करते हैं समझाने का कोशिश करते हैं, ये थियोरेटिकल है, बल्कि जब हमारा आध्यात्मिक चेतना का उन्मेष होगा, मतलब ये भौतिक जगत का सारे जो रुकावट ये या आवरण वो जब दूर हो जाएगा और आत्मा जब अपना स्वरूप में स्थित होगा तब चिन्मय जगत में प्रवेश होगा और चिन्मय जगत में भगवान का दर्शन होगा। अंतर यही है, एक है थियोरेटिकल नॉलेज एंड द अदर इज प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। द रियलाइजेशन इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, व्हिच मींस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसपोर्टेशन टू द स्पिरिचुअल स्काई। हरे कृष्ण।
महाराज आपने बताया कि श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद भगवान का मुख है, क्या हम पहले दशम स्कंद पढ़ सकते हैं, दशम स्कंद पढ़ना चाहिए शुरुआत करना चाहते हैं या?
हाँ बहुत सुंदर, वेरी गुड क्वेश्चन। पढ़ तो सकते हैं भगवान का मुंह, पहले बात यह है कि भगवान को दर्शन करने का एक तरीका होता है। मंदिर में जब हम जाकर भगवान को दर्शन करते हैं किस रूप से भगवान को दर्शन करना चाहिए? पहले चरण कमल से, धीरे धीरे चरण कमल से, पैर जानू पेट बक्ष तब मुंह का दर्शन करना चाहिए। तो वैसे ही जब भागवतम पाठ होता है तो हमें प्रथम स्कंध से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए, नहीं तो भगवान को पहचानने में तकलीफ हो सकता है, भगवान को पहचानने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि वो भगवान, ओ इसका कृष्ण का मुख तो एक मनुष्य जैसा है, तो कृष्ण भी एक मानुष है, ये अगर हम सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बल्कि जब भगवान के चरण कमल से जब दर्शन होता है तो धीरे धीरे हमको याद आता है, हम समझ लेते हैं कि भगवान परमेश्वर है, भगवान सर्व कारण कारण है, भगवान कौन है, उस तब हम सही रूप से समझ पाते हैं। इसलिए भगवत श्रीमद् भागवतम का पाठ प्रथम स्कंद से शुरू करके धीरे धीरे दसम स्कंद में, और प्रभुपाद जी कहते थे श्रीमद् भागवतम पाठ के पहले भगवत गीता को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पाठ करने से हमें पता चलता है कृष्ण कौन है, क्योंकि कृष्ण खुद समझा रहे हैं योग। ओके सो यस नरोत्तम,
गुरु महाराज छठे स्कंद में ये एक श्लोक आया है पहले अध्याय के उसमें, कि जो कोई भी दीक्षा लेने के लिए जब दीक्षा लेता है तो उसको ब्रह्मचर्य तपस्या शरीर मन पर संयम रखना चाहिए, तो इसमें गुरु महाराज ब्रह्मचर्य और तपस्या पर संयम रखने के लिए क्यों कहा गया है, ये कुछ समझ नहीं है।
देखो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले लायक बनना चाहिए, है ना? जैसे कॉलेज में जाने के लिए कोई ऐसे आदमी सीधा कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उसको स्कूल का पढ़ाई खत्म करने के पश्चात कॉलेज में जाना जा सकता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, ऐसे ही हर कार्य के लिए पात्रता का जरूरत होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षण, अगर आध्यात्मिक जगत के प्रति आध्यात्मिक कार्य के प्रति आकर्षण नहीं होता तो दीक्षा लेने से फायदा क्या होगा? भौतिक जगत के प्रति अनाशक्ति अगर ना हुआ तो हम कैसे आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करेंगे? तो इसलिए जो इसका वर्णन हुआ है कि इस कार्य के लिए लायक बनना चाहिए, वी शुड बी क्वालिफाइड एंड दैट इज द क्वालिफिकेशन। संयम,
संयम बरतने के लिए कहा है तपस्या और ब्रह्मचर्य के लिए, संयम से क्या है?
देखो संयम का मतलब है इंद्रिया का जो वृत्ति है उसको दमन करना। इंद्रिय का वृत्ति क्या है? धायते विषयान पुंस, विषय के प्रति धावित धायन ही इंद्रिय का वृत्ति है, उसको दमन करने का जो चेष्टा उसे संयम का। ओके सो आई विल स्टॉप नाउ, थैंक यू ऑल वेरी मच, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, गौर प्रेमानंदे
हरि महाराज की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।